ஓம் சாந்தி. ஆஜ் ஹமாரி பச்சி கே லாஸ்ட் தின் மே ஐசை கேங்கே சப் சார் ரூப் மே ஃபைனல் கர்னே கே லியே, ஃபைனல் தப்பா லகானே கே லியே தில்லி ராஜதானி சே ராஜயோகினி புஷ்பா பென் ஜி பதாரி ஹே, க்யோகி சப்கோ பவிஷ்ய சத்யோகி தில்லி ராஜதானி கே சாத் சம்பந்த் தோ ரக்னா ஹி ஹோகா, வஹா மில்னா ஆனா ஜானா காரோபார் குச் நா குச் சலேகா, தோ தில்லி சே பென் ஜி நா ஆயே வோ கேசே ஹோ சக்தா, இஸிலியே பாபா நே ஆஜ் காஸ் தில்லி சே புஷ்பா பென் ஜி கோ பேஜா ஹே. ஆப் லௌகிக் மே பி शैक्षणिक जीवन में भी मेगावी छात्रा रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपने एमए बीएड की डिग्री प्राप्त करके 1976 में आपने विश्व कल्याण अर्थ बाबा की सेवा में जीवन को समर्पित किया. वर्तमान समय दिल्ली का जो पांडव भवन करोल बाग सेंटर है, मुख्य सेंटर है जहां दादी गुलजार जी भी रहते थे, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बंबई है, तो वहां आप अपनी सेवाएं, उसके संबंधित भी कई सेवा केंद्र है, उसके आप डायरेक्टर हो ऐसे ही कहेंगे सब कुछ. दादी तो अभी मधुवन में रहती, या बीमार है तो बंबई रहती, या आना जाना भी होता, लेकिन पीछे सारा कारोबार आप संभालते हो. और यहां या देश विदेश में भी सेवाएं जो भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आदि होती है उसमें भी आप अपने विशेषता जो वक्तव्य देने की कुशल वक्ता हो, जिस आधार से आप सभी सेवाओं में संलग्न हो, विदेश से भी काफी लोगों बाबा के बच्चों को दिल्ली में आना होता है, आप भी देश विदेश की सेवा में जुड़े हुए हो, और खास जो रेडियो टीवी चैनल आदि में भी आपके प्रवचन आते हैं, आपने कईयों ने सुना भी होगा देखा भी होगा. और हमारी जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की जूरिस्ट एक्टिविटीज विंग की आप डायरेक्टर हो, और दिल्ली से भी आपको प्रमुख क्षेत्र की प्रमुख समाज सेविका का अवार्ड भी मिला हुआ है. तो इस प्रकार से आपने कई प्रकार की अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाया है और बाबा की सेवा को आगे बढ़ाते रहे हो. आपके लिए यही कहूंगी कि आप दृढ़ता की देवी हो, उमंग का फरिश्ता हो, सेवा में लगाई आपने अपनी हर विशेषता को जो बाबा की सेवा में दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहती है. तो आज हमारे बीच बठी का क्लास कराने के लिए आप आए हो, ऐसे आप हर ट्रेनिंग में या टीचर्स ट्रेनिंग का हो, टीचर्स की भट्टी का हो, पुराने भाई बहनों का, युगलों का, यादव कुमारों का, जिसका भी नीचे भी भट्टियों का प्रोग्राम चलता उसमें आपका विशेष योगदान रहता ही है. आज हमारा इस भट्टी के क्लास का विषय पुराने संस्कारों का संस्कार और दैवी संस्कारों का वाहन, इस पर आपके सुंदर विचार स्पष्ट रूप से इस विषय को स्पष्टीकरण करेंगे. और आप भी सभी बड़े ध्यान से एकाग्रता से आपकी बातों को सुने, और बड़े व्यस्त है अभी सबको मालूम हो या न हो, ज्ञान सरोवर में पॉलिटिशियन विंग की कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें भी आप अति व्यस्त हो, वीआईपी सब आए हुए हैं, उन्हों से मिलना करना सब कुछ होता है, फिर भी बड़ी कसम कसा में आप यहां पधारे हैं, तो हम सब बहुत दिल से एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं. स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. अभी ज्ञान सरोवर में भी डॉक्टर निर्मला दीदी नहीं है, मीन सेवा में बाहर है, तो उसका भी सेवा का पार्ट है आप लेकर रहे हो। बाबा ने आपको यहाँ ज्ञान सरोवर में भी ये सेवा के लिए रखा है। तो ऐसे अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न आज हमें आप प्राप्त हुए हो, वो हमारा सबका सौभाग्य है। तो अभी नम्र निवेदन करती हूँ कि आज के विषय को सबके सामने रखें।
ओम शांति। आज का विषय जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही बहुत डीप भी है। हिंदी समझते हैं ना सब? ट्रांसलेशन हो रही है, ये पीछे हाथ खड़ा कर रहे हैं अभी दो चार, उनको मिला नहीं शायद ट्रांसलेशन का। समझा बात को? मिला सबको ट्रांसलेशन का? ओके, थैंक यू। क्योंकि प्यारे बाबा ने हमको बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब आप सोचिए देवताओं के संस्कार कैसे होंगे, मालूम है ना? हम महिमा भी गाते हैं कि जब हम देवता होंगे या जब हम ये पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे बन जाएंगे। अब ये बात बहुत ऊंची है, ऊंची है ना? तो उसके लिए संस्कार भी उतने ही हमारे दिव्य होंगे, तो ये सारी बातें हमारे जीवन में दिखाई देंगी और भविष्य देवताई जीवन में ये सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पुराने संस्कार दग्ध हो जाएं, भस्म हो जाएं, कहा जिनका संस्कार हो जाए, स्वाहा हो जाए। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि भले हम बहुत बाबा के बच्चे सभी बातों में पुरुषार्थ ही है, ही अच्छा पुरुषार्थ करते ही हैं, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ढीले हैं, फिर भी पुराने संस्कार अपना असर दिखाते रहते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। उसकी लिस्ट निकालो कितनी लंबी होगी, और हर एक के अंदर कोई ना कोई, सबके अंदर एक जैसा नहीं होगा। मान लिया जाए किसी में आलस्य का हो सकता है, किसी में कोई और हो सकता है, अलबेलेपन का हो सकता है, कोई और, कितने हैं, बहुत हैं। अब उसके विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे कि वो पुराने संस्कार क्या क्या हैं, लेकिन मूल बात है कि वो हमारे चले जाएं, भस्म हो जाएं, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। क्योंकि 63 जन्मों के वो बने हुए हैं। संस्कार कैसे बनते हैं ये तो आप अच्छी तरह से, मैं समझती हूँ, जानते ही होंगे कि जो हम कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप आत्मा में वो संस्कार बनते जाते हैं। 63 जन्म हमने जो पार्ट प्ले किया वो कैसा किया, बाबा ने हमें स्पष्ट बताया है। ये विषय थोड़ा सीरियस है ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना? तो वो जो हमने देह अभिमान के वश कर्म किए, क्योंकि सो की स्मृति नहीं रही और भक्ति मार्ग रहा, भगवान को बुलाते रहे, याद करते रहे, पुकारते रहे, वो याद भी यथारत नहीं थी, तो उन 5 विकारों के अधीन जो कर्म हुए उनसे आत्मा के जो संस्कार बने, जिसको अभी हम कहते हैं पुराने संस्कार, वो कोई इस जन्म के नहीं है सिर्फ, इस जन्म में तो देखो बहुतों को बाल्यकाल से ज्ञान मिल गया, आप में से बहुतों को युवावस्था में ही मिल गया, हा? या इस जन्म की अपनी कर्म कहानी जानते भी हैं अच्छी तरह, उसकी रियलाइजेशन भी की, तब तो बाबा के बने और परिवर्तन किया। लेकिन पिछले कई जन्मों के वो संस्कार हमारे बने हुए हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं वो पुराने संस्कार हैं। तो अब जबकि हमारा जन्म ही नया हो गया, नया जन्म हुआ ना, संगम युग माना ही सब कुछ नया, सब कुछ नया, जन्म नया तो सब कुछ नया ना, संबंध भी नया हो गया, ईश्वर के साथ संबंध हो गया, परिवार भी ये अलौकिक हो गया, खान पान बदल गया, सब बाह्य आपने बदल दिया, धारणाएं बदल ली, इतनी पवित्रता की धारणा कर ली, सब कुछ बदल लिया, यहाँ तक कि नाम भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए। तो हमारे जो आत्मा में कई जन्मों के कर्मों के कारण संस्कार बने हुए हैं, और अब जबकि हम देवता बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य ही वही है, तो वो संस्कार हमारे अंदर आ जाए, ये बहुत जरूरी है। तो उन संस्कारों के कारण जो पुराने हैं, वो वास्तव में हमारी आत्मा के अंदर वो सुषुप्त सारी जो मर्ज रूप में कहें थॉट्स पड़े हुए हैं, मर्ज रूप में स्मृतियां पड़ी हुई हैं जिसके कारण थॉट चलते हैं, वो स्मृतियां कोई हमें मालूम नहीं है, परंतु 63 जन्म हम जो करके आए वो आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड हैं, तो उसका इफेक्ट होता है और उसके कारण से ही वो कर्म होते हैं। अब उन स्मृतियों को हम बदल दें, वो सुषुप्त में भी ना रहे, जैसे आप देखो कई बार हम सफाई करते हैं कहीं की भी, तो एक होता ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा दी, फिर जब दीपावली होती है तब क्या करते हैं, तब ऊपर ऊपर से झाड़ू नहीं लगाते हैं, रोज तो ऊपर ऊपर से लगाते हैं ना, या हफ्ते में थोड़ी और अच्छी लगा देंगे, खिड़की भी झाड़ दो पर्दा भी झाड़ दो, लेकिन जब दीपावली होती है तो पूरा व्हाइट वॉश करते हैं, कोने में भी कोई कहीं जम्स है, अंदर छिपा हुआ भी है वो भी रहे नहीं, जरा सी भी गंदगी कहीं रहे नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो एकदम सुषुप्त स्मृतियां हैं, उन तक हमारे ज्ञान और योग का इफेक्ट आए और आत्मा एकदम अंदर से चेंज हो जाए, तो संस्कार चेंज होंगे। अब उसके लिए ही प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले ज्ञान के रंग में रंगा, कि ज्ञान के रंग में तुम आत्मा रंग जाओ, और सबसे पहली हमें ये पहचान दी, हमारी सत्यता बतलाई कि बच्चे तुम कौन हो, और वह स्मृति जो हमें विस्मृत हो चुकी थी और जिस कारण से हम देहभान में आ चुके थे, और देहभान के कारण ही वो संस्कार कैसे बन गए, आसुरी बन गए, जो आज अब हमारे इस ब्राह्मण जीवन में नहीं होने चाहिए, इसलिए हम उन्हें पुराने संस्कार कहते हैं। तो वो हमारी अब की स्मृति जो सत्य स्वरूप की स्मृति है, हमें उसको अच्छी तरह पावरफुल ऊपर ऊपर से नहीं, ज्ञान तो मिल गया मैं आत्मा हूं, लेकिन हमारी वो कॉन्शियस कितनी बनी, हमारी वो अवेयरनेस कितनी आई, उस चेतना को हमें चेंज करना होगा कि जो मेरी रियल कॉन्शियस है कि मैं मूल में क्या हूं, ये नॉलेज तो हो गई, पर मैंने स्वयं को उस ओरिजिनल कॉन्शियस में कितना रखा। ये बट्टी इसी रियलाइजेशन की है वास्तव में। शुरू में भी 14 वर्ष जब बट्टी चली तो दादियों ने यही पुरुषार्थ किया। बाबा इतनी जल्दी संपूर्ण कैसे बने? ऐसे ही नहीं बन गए कि शिव बाबा की प्रवेशता थी इसलिए बन गए, समर्पण हुआ इसलिए बन गए, परंतु बाबा ने भी खुद अंदर ही अंदर बहुत अपने ऊपर डीप पुरुषार्थ किया, मेहनत की, बार बार अपने को अंदर से रियलाइज कराया, पक्का किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और जिसको भी बाबा सामने आता था, जो भी शुरू में ही जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई और आत्मा की समझ आई, रियलाइजेशन हुई, तो बाबा ने अंदर ही अंदर जैसे किसी चीज का घोटा लगाते हैं ऐसे पुरुषार्थ किया। जो भी सामने आता था बाबा अपने को पक्का कराता था, अंदर मुख से नहीं बोलता था, पक्का कराता था। माना बाबा की युगल सामने से आ रही है तो बाबा पक्का कराता था, ये जसोदा नहीं, बाबा की युगल का नाम जसोदा था, ये आत्मा है। राधे आ रही है, ये आत्मा है। ब्रिजेंद्रा बाबा की लौकिक बहू सामने से आ रही है, ये आत्मा है। बेटा सामने से आ रहा है, ये आत्मा है। ऐसे बाबा ने स्वयं को पक्का कराया और सबके नाम के आगे भी ओम लगाना शुरू कर दिया। ओम मना आत्मा, ओम राधे, हाँ ओम फलानी, ओम फलानी, और नाम भी पड़ गया ओम मंडली, मशहूर हो गई। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो बाद में नाम पड़ा। तो ऐसे बाबा ने उस स्व स्मृति को पक्का किया। हमें अपने उस देह के भान को चेंज करना होगा, तभी हमारे पुराने संस्कार चेंज होंगे। क्योंकि जब हम अपनी मूल की स्मृति में जाएंगे कि ओरिजिनली मैं एक सोल हूं, उस सोल कॉन्शियस में आएंगे, तो जो हमारे मूल संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार है, अनादि संस्कार है, तब वो इमर्ज होंगे। अब हमें ये तो समझ है कि मैं आत्मा मूल में क्या हूं, बहुत शांत पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। हम सबको बताते हैं ना ये कि आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा ओरिजिनल में पवित्र है, शुद्ध है, सुनाते हैं ना। ओरिजिनल में हमारे 7 गुण हैं, वो भी सुनाते हैं ना सबको। मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, जिसको हम मूल संस्कार कहते हैं, जिसको हम अनादि संस्कार कहते हैं। लेकिन देह भान के कारण, 63 जन्मों में उसकी विस्मृति के कारण हमने जो कर्म किए, उसके फल स्वरूप जो संस्कार बने, वो पुराने आसुरी संस्कार बन गए। तो उन्हें दगध भी फिर उसी ही विधि से करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति आगे जाए और उसको फिर वापस उसी स्थान पे आना है, तो वहां से लौट के आएगा ना। तो हम जैसे देह भान की यात्रा पे चले गए थे, पर अब हमें फिर से अपनी उसी ही यात्रा पर आना है जो हमारी ओरिजिनलिटी है, कि मैं अपने रियल स्वरूप में क्या हूं। तो हमें अपनी उस कॉन्शियस को बार बार अंदर, इस चेतना को जागृत रखना है। ये अभ्यास चाहिए। नॉलेज आपको हो गई, लेकिन अंदर अब ये अभ्यास चाहिए। अवेयरनेस भी आपको हो गई, तो जितना जितना हमारा ये सूक्ष्म अंदर अटेंशन होगा, तो हमारे संस्कार चेंज होते जाएंगे। क्यों कईयों के देखो इतने वर्ष वर्ष पुरुषार्थ करने के बाद भी वही के वही संस्कार होते हैं, और क्यों कईयों के देखो थोड़ा सा समय हुआ होता है लेकिन उनके संस्कार चेंज होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। कारण कि अंदर सूक्ष्म कितनी जागृति है, कितना अटेंशन प्रैक्टिकल अभ्यास है। अब आप अपने सारे दिन की दिनचर्या चेक करो कि मुझे सारे दिन में मैंने अपनी आत्म अभिमानी स्थिति कितनी बनाई, क्योंकि ये जो प्योर संस्कार है वो तो आत्मा के अंदर मूल रूप से छिपे हुए हैं, और अब मुझे उन पुराने संस्कारों को हटाना है तो जरूर है जो पुराने संस्कारों के कारण स्मृतियां पड़ी हुई है अंदर वो फिनिश हो जाए, वो उसको टच करे अब की स्मृति, तो वो अब की स्मृति हमें बहुत गहराई से अंदर महसूस करनी है, बहुत गहराई से कि हाँ मैं इतनी पवित्र आत्मा हूँ, इतनी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो मेरे अंदर ईश्वर के संस्कार आए। वैसे भी देखो वंशज होते हैं ना, तो वो संस्कार काम करते हैं, लौकिक में भी कहते हैं हाँ कि मात पिता से भी मिलते हैं। अब हमारा ये अलौकिक जन्म है, हम शिव बाबा की संतान बन गए, रोज हम कहते हैं बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, बाबा भी हमें बड़े प्यार से कहते हैं मेरे मीठे लाडले बच्चे, आज की मुरली में भी था हाँ मेरे मीठे लाडले बच्चे, और बाबा कहते हैं मैं क्यों कहता हूँ मीठे लाडले बच्चे राजी खुशी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनको माया से बड़ा सामना करना पड़ता है हाँ? माया से, क्योंकि माया भी बहुत पहलवान है और उससे जीत पानी है, युद्ध के मैदान में खड़े हो तो बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, माया पे जीत पाना कोई इतना आसान तो नहीं ना। माया पे जीत पाने का मतलब ही यही है कि उन पांच विकारों पर, और पांच विकारों के कारण जो हमारे संस्कार बन गए वो हमारे ऊपर हावी ना हो और हमारे ओरिजिनल संस्कार काम करें। तो बाबा कहते हैं मैं भी बच्चों को देखो रोज ये पूछता हूँ, तो हम उसकी संतान होने के नाते से अभी ईश्वरीय संस्कार क्या है उस वंशज होने के नाते मेरे अंदर अब वो आ जाए, और उसके लिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे दूसरी स्मृति ईश्वरीय स्मृति चाहिए, तो आपके पुराने संस्कार दग्ध होंगे, पहली आत्मिक स्मृति का अभ्यास और दूसरा ईश्वरीय स्मृति का अभ्यास। क्योंकि जो विकर्म बने जिसके कारण पुराने संस्कार बने उसकी जड़ भी तो देह अभिमान रहा ना, विकर्म कैसे हुए देह अभिमान के कारण ना, तो जरूर है उस देह अभिमान को ही हमें खत्म करना होगा ना। अभी भी देखो कई बार कोई कोई से कोई गलती हो जाती है हाँ, कोई विकार के वशीभूत कोई कर्म हो जाता है तो बाबा कहते हैं उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है। चलो पीछे तो हम 63 जन्मों में ज्ञान नहीं था, और ज्ञान तो छोड़ो अपनी स्मृति भी नहीं थी, ज्ञान तो अब मिला, तो उस समय हमने देह भान में किए कर्म तो ही वो संस्कार बने, तो हमें उसी देह भान को ही जड़ से खत्म करना होगा और वो आत्मिक स्मृति से ही होगा। और साथ साथ दूसरा बाबा कहते हैं ईश्वरीय संस्कारों को अपना संस्कार बनाओ और वो ईश्वरीय स्मृति से बनेंगे। ईश्वरीय संस्कार कौन से हैं वो भी आप जानते हो, शिव बाबा के संस्कार कौन से हैं, जैसे बच्चे को बाप के संस्कार लेना आसान होता है ना, ऐसे ही मुझे ईश्वरीय संस्कार ईश्वरीय संतान होने के नाते इस जन्म में अभी ही मिल रहे हैं। तो शिव बाबा जैसे ज्ञान का सागर है तो हमारे अंदर ज्ञान के संस्कार आ रहे हैं ना, ज्ञान सुनाते हो ना सबको या नहीं सुनाते, हाँ या ना, थोड़ा सुनाते हो तो ज्यादा सुनाओ हाँ? तभी तो वो संस्कार बनेगा ना। शांति का सागर है शिव बाबा, तो शांति का स्वभाव बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना। आप सबकी तो सूरत ही कह रही है बहुत शांत आत्मा हो, चलो कभी आता होगा क्रोध, क्यों, क्योंकि शांति की शक्ति कम जमा की होगी। अगर शांति की शक्ति पूरी जमा की है तो कोई कितना भी दिलाए हाँ तो पुराना संस्कार हावी नहीं हो सकता, क्रोध का संस्कार तो पुराना संस्कार है ना, कोई भी विकार का संस्कार पुराना संस्कार है ना। तो हमें तो ये अनुभव है ना, अभी जीवन में हो रहा है ना, कि शिव बाबा शांति का सागर है और मैं आत्मा भी उसकी संतान शांत स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे सभी गुणों में शिव बाबा जो आप महिमा करते हो, वो संस्कार मेरे संस्कार होने चाहिए, मैं उसकी संतान हूं। तो जितना आप ईश्वरीय स्मृति में रहेंगे, उतना ही हमारे ईश्वरीय संस्कार बनते जाएंगे। शिव बाबा क्षमा का सागर है, दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है, दया का सागर है, कल्याणकारी है। क्या मुझ आत्मा में ये सब आया? ये सब आया, कितना आया? ऐसे तो कहेंगे ही नहीं कि नहीं आया, आया, लेकिन कितना आया? तो इस प्रकार से हमारे ये संस्कार चेंज होंगे। जितना जितना हमारी ये डीपनेस होगी, जितना जितना हमारी ये कॉन्शियस बनती जाएगी, उतना उतना हमारे वो संस्कार चेंज होते जाएंगे। आत्मा में डिविनिटी आती जाएगी, रूहानियत आती जाएगी। और आप देखो, आप अनुभव करते हो, भले आपने बाबा को मम्मा को नहीं देखा, दादियों को तो देखा है ना, तो वो दिव्यता रूहानियत कैसे आ गई? इसी ईश्वरीय स्मृति से कॉन्शियस ही अपनी वही बना ली। ये सूक्ष्म अंदर का पुरुषार्थ है। तो मेरे अंदर वही बाबा के मिले हुए संस्कार संतान होने के नाते आई। तो जितना हम उस कॉन्शियस में रहेंगे तो वो आते जाएंगे। सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं होगा। ऐसे सुनने का काम तो आप जन्म जन्म से बहुत कुछ सुनते आए। अभी भी देखो, हम बाबा की मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। और आजकल तो सुनना बड़ा आसान हो गया, कान में पड़ा ही रहता है कुछ ना कुछ, है ना? बहुत माल है सबके पास, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। करनी पड़ती है, बड़ा आसान हो गया है। पहले तो फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। दादियां सुनाती हैं, हम बाबा की मुरली चलती थी, एक एक बात कई कई बार लिखते थे, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। और अभी तक भी मैं देखती हूँ दादियों के हाथ में हर समय मुरली होती है, पढ़ती रहती है। लेकिन उसको मैंने अपने ऊपर अंदर से कितना महसूस किया। बिना महसूसता चेंज नहीं आता है और शक्ति नहीं बनती है, वो शक्ति बन जाए। सुना तो भक्ति मार्ग में भी बहुत कुछ, लेकिन क्या कोई भी विकार का त्याग कोई कर पाया था? क्या कोई भी कोई नई धारणा, हाँ, कोई नया संस्कार धारण कर पाया था? नहीं। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक व्यक्ति था, उसके अंदर चोरी का संस्कार था। अब संस्कार तो कई होते हैं, आप ये नहीं सोचना चोरी वाला ही क्यों सुनाया हमने। हाँ, कोई में आलस्य का, कोई में क्रोध का, कोई में झूठ बोलने का। हाँ, कई बार कई कहते हैं, देखो ये इतना अच्छा आदमी है, इतनी सेवा करता है, इतना, लेकिन इसका ये संस्कार बड़ा कड़ा है। हाँ, वो बेचारा बदनाम ही रहता है उस संस्कार के कारण। माना झूठ बोलने का ही है, सपोज पुराना संस्कार है ना, अब थोड़ा आया नया संस्कार कोई, ये पिछले जन्मों का है ये सब। आप बाबा के बन गए, कई ऐसे कहते भी हैं, अब तो आप भगवान के बन गए, आपके अंदर ये आदत क्यों है? अरे कोई अब थोड़ा ये आदत आई है, ये तो पिछले जन्मों से बनी हुई है। कोई ब्रह्मा कुमारियों ने थोड़ा ये आदत बनाई है। कोई कोई का पति आता है झगड़ा करने, बांधेली माता होती है, कहते हैं अरे ये क्या तुम्हारे पास आती है, ये रोज तो मेरे से झगड़ा करती घर में। तो हम उसको कहते हैं, भैया ये कोई ज्ञान में आके थोड़ा आपसे झगड़ा करने लगी है, तो इसका पिछला, अब वो ये तो समझते नहीं है। कई बार आपके पड़ोसी भी आके कंप्लेंट करते हैं, बहन जी ये रोज तो आपके पास योग करने आता है लेकिन ये तो बड़ा तंग करता है भाई हमको। हमने कहा भाई ये कोई ब्रह्मा कुमारियों का दोष नहीं है, ये कोई ज्ञान का दोष नहीं है, कोई भगवान ने शिक्षा नहीं दी है, लेकिन वो चेंज कर रहा है अपने आप को। ये तो पूर्व जन्मों के, अब इतना कोई तो समझता नहीं है डीप ज्ञान, बार बार से देखते हैं तो वो पुराने संस्कार काम करते हैं तो वो दगद नहीं हुए पूरे। तो मैं सुना रही थी कि ऐसे भिन्न भिन्न संस्कार, किसमें कोई किसमें कोई, हाँ कई कई संस्कार, ये भी हमें खुद को खुद से झांकना होगा कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा संस्कार है जो मेरे लिए विघन रूप बनता है, और टोटली मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो जो वो सारे पुराना हाँ पन निकल जाए। तो मैं सुना रही थी कि उस भाई में चोरी का था, तो कमाई का अज्ञानी मनुष्य था, कोई ज्ञानी की बात नहीं है ये। तो एक दिन वो ऐसे घोड़े पर जा रहा था तो उसका घोड़ा मंदिर के आगे से गुजरा, तो मंदिर में कथा चल रही थी, पंडित जी कथा कर रहे थे और वो सप्ताह रखा हुआ था, जैसे मंदिरों में बीच बीच में रख, तो रोज की कथा होती है ना, एक दोपहर को अलग से, चार से पांच, जैसे साप्ताहिक चल रहा था और उसमें पंडित जी रोज चोरी नहीं करनी चाहिए इस पर कुछ न कुछ सुनाते रहते थे। तो जैसे ही वो चोरी के ऊपर सुना रहे थे तो उसके कान में वो चोरी शब्द पड़ गया, तो उसने सोचा ये तो मैं ही करता हूँ, जरा सुनू पंडित जी चोरी के बारे में क्या बताते हैं। तो वो घोड़े को किनारे पर खड़ा करके बांध के अंदर आके बैठ गया। अब पंडित जी ने बड़ी अच्छी बातें सुनाई, बहुत अच्छी बातें सुनाई, उसके दिल को सचमुच लग गई कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। और जब कथा पूरी हो गई, सब चले गए, तो वो भी बाहर आया, अपना घोड़ा उठाया और चल पड़ा। तो उसको अंदर ही अंदर बड़ा महसूस हुआ कि मैं अब आज से चोरी नहीं करूंगा, पंडित जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब सोचा कि मैं चोरी नहीं करूंगा तो मुझे कोई काम धंधा करना पड़ेगा, चोरी करता ही वही मनुष्य है जो काम धंधा करने से जी चुराता है, हाँ मेहनत नहीं करना चाहता, सोचता है ऐसे ही खा लूं। आज दुनिया में यही तो चल रहा है ना, देखो अब तो चोरी के तरीके भी बदल गए हैं, वो वाले नहीं रहे, हाँ। तो फिर सोचा अब मैं कहाँ जाके मेहनत करूंगा, संस्कार नहीं है ना मेहनत करने का। आखिर उसको आया कि मैं राजा के पास जाता हूँ, हाँ। तो वो वहां थोड़ा कम जल्दी कुछ मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गया तो उसने वहां जाके दरबान से मिला, अपनी अर्जी डाली, तो राजा तक बात पहुंची। तो राजा ने कहा मजबूर आदमी है, चलो कोई बात नहीं, उसको रख लो, राजमहल में तो काम धंधा चलता ही रहता है, हाँ बड़े बड़े स्थानों पे तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है ना, तो इसको सफाई का काम दे दो, हल्का काम दे दो। तो उसने सोचा चलो ठीक है, झाड़ू पोछा करना तो आसान है। और वो वहां जहाँ वो रानी रहती थी वहां पर झाड़ू पोछा करना उसने शुरू कर दिया। अब जब वो झाड़ू पोछा करके पूरा करता था तो कूड़ा डालने बाहर जाता था। अब जब थोड़ा सा राजमहल के पीछे की तरफ, तो जब वो पीछे की तरफ कूड़ा डालने जाता था और वापस लौट के आता था तो उसको बहुत टाइम लग जाता था। तो थोड़ा सा राजमहल में शक पड़ने लगा कि कूड़ा डालने जाता है इतना टाइम क्यों लगा के आता है। तो वो बात ऊपर तक गई तो उसकी थोड़ी इंक्वायरी करनी शुरू की। तो पता चला एक दिन जब उसके पीछे पीछे इंक्वायरी करने वाले गए कि वो कूड़ा फेंक के फिर थोड़ा सा राजमहल से दूर एक खाली स्थान की तरफ चला जाता है और वहां एक भूसे का उसने ढेर लगाया हुआ है और उस भूसे पर बैठा है। तो वो बड़े हैरान हुए जो जासूस गए थे पीछे देखने के लिए कि ये यहाँ भूसा, भूसा समझते हो ना, वो जो गाय भैंस को खिलाया जाता है, गाय भैंस को खिलाने वाला, समझते हो ना भूसा, समझ गए सब। तो वो बड़े हैरान हुए कि ये यहाँ भूसे के ढेर पे बैठा क्या कर रहा है। तो उसे पूछा गया तो उसने सुनाया ये भूसा मैंने यहाँ इकट्ठा किया है और इसको मैं बेचने की प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उसको पकड़ के राजमहल में लाया गया और राज दरबार में लाया गया, राजा को बताया गया। कि ऐसे ऐसे इसने भूसे की चोरी, पीछे भूसा बहुत पड़ा रहता था राजमहल के पीछे घोड़ों के लिए भैंसों के लिए, क्योंकि वो तो ढेर होता है, और वही वो थोड़ा थोड़ा ले जाके इकट्ठा करता रहा। तो राजा ने, जब राजा के सामने वो गया तो राजा ने उससे पूछा, भाई आप ये सुनाओ मेरे को, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप राजमहल में सफाई की आपकी सेवा थी? कहा, कि जब आप सफाई करते होंगे तो आपको रानी के कमरे में गहने भी मिलते होंगे? कहता, हाँ हाँ राजा साहब, गहने तो होते थे। तो राजा ने कहा, तब तुम्हें उन गहनों को उठाने का ख्याल नहीं आया? कहते, महाराज वो ऐसा था, मैंने पंडित जी की कथा सुनता हूँ, तो पंडित जी ने कथा में कहा था कि जो गहने चोरी करता है उसकी धर्मराजपुरी में गर्दन उतार दी जाती है। तो मैंने कहा, नहीं नहीं मैं गहना चोरी नहीं करूंगा। तो राजा हंस पड़ा, कहा, अच्छा तो तुम उसमें भी जाता होगा रसोई घर में सफाई करने? कहा, मैं रसोई घर में भी सफाई करता था। कहा, वहां तो बहुत चांदी के बर्तन है। कहता, हाँ वहां थे। तो कहा, वो तूने चोरी नहीं किए? कहा, मुझे उसको भी चोरी करने का ख्याल आया था, मेरा संस्कार है, तो मैं पेशे से चोर था। तो कहा, फिर तुमने किया नहीं? कहा, पंडित जी ने कथा सुनाई थी कि जो बर्तन चोरी करता है ना, उसको धर्मराजपुरी में तेल के कढ़ाई में डाल के उबाल दिया जाता है। तो कहता, मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं चोरी, ये बर्तन चोरी नहीं करूंगा, मुझे पता था मैं इसको करूंगा बेचूंगा तो खूब पैसा मिलेगा। तो कहा कि तुम रानी के उसमें भी जाता होगा शयन कक्ष में, हाँ बेडरूम में? कहा, जाता था सफाई करने। तो कहा, वहां भी बहुत कुछ होता होगा? कहा, का बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, साड़ियां जिसमें सोने की तार लगी हुई थी। तो कहा, वो नहीं चोरी की? कहा कि पंडित जी ने कथा सुनाई थी, जो वस्त्र चोरी करता है उसकी धर्मराजपुरी में खाल उधेड़ देते हैं। तो राजा हंसने लगा। तो राजा ने कहा, फिर तुमने भूसा चोरी क्यों किया? हाँ, वो भूसा बाहर जाके इकट्ठा कर करके आता रहा और उसको बेचने के लिए, हाँ कि पैसे मिलेंगे। कहते हैं, महाराज पंडित जी ने भूसे की तो कोई कथा ही नहीं सुनाई थी। तो राजा समझ गया कि चोर आखिर चोर ही रहा, संस्कार वही रहा, सिर्फ डर के मारे उसने कपड़ा नहीं उठाया, बर्तन नहीं उठाया, लेकिन संस्कार उसका चेंज नहीं हुआ, वो वही आखिर भूसा चोरी किया। तो समझा आपने? तो सिर्फ सुनने तक हम थोड़ा दबा सकते हैं किसी बात को, ठीक है, लेकिन चेंज हो जाए, हमारा लक्ष्य क्या है, चेंज हो जाए, भस्म हो जाए। हाँ, पुराने संस्कारों का भी सुनाया ना, संस्कार हो जाए, स्वाहा हो जाए, जैसे डेड बॉडी को जला के आते हैं ना, तो उसकी राख भी उठा लाते हैं, हाँ, और उसकी हड्डियां भी उठा लाते हैं, बहा देते हैं उसको ना, वो भी ना रहे, ऐसे हमारे संस्कार पुराने दग्ध हो जाए। तो हमें सुनने तक अपने को सीमित नहीं रखना है। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, ये पॉइंट कितनी अच्छी है, फिर लिख लेना, चलो अब तो वो भी हमने कहा ना जरूरत नहीं है, बहुत माल सारों के पास अभी जेब में भरा पड़ा है, इंटरनेट है ना इसी के लिए, और वो तो अभी साइंस ने और ही कितना रिफाइन दे दिया है कि पूरी जेब में ही आ जाए सब कुछ। अंदर हमें, अंदर सुषुप्त स्मृतियों को टच करना होगा, छूना होगा, माना वहां तक पहुंचना होगा, जैसे हमने कहा ना दीपावली पे पूरी सफाई कर देते हैं एकदम, कहीं कोने में कोई जम्स कोई जाला जरा सा भी, सफाई तो उसे ही मानी जाएगी ना। जैसे सूर्य की अग्नि कैसे जब आती है तो कीड़े मकोड़े सब गंदगी को भस्म कर देती है, क्योंकि उसकी इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है उसमें। तो क्या मैंने अपने अंदर ऑल माइटी गॉड से उतनी एनर्जी भरी है? ये जरूरी है। उतनी एनर्जी मैं बाबा से लूं, इतना मेरा डीप कनेक्शन बाबा से चाहिए, और वो है अंदर सूक्ष्म, वो बाह्य नहीं है। हाँ, उसका प्रभाव बाहर आएगा, वो रूहानियत आएगी, वो दिव्यता आएगी, वो बोल चाल व्यवहार दिव्य बन जाएगा, उसकी निशानियां होंगी। जितना हमारे पुराने संस्कार दग दोते जाएंगे, उसकी ये निशानियां होंगी कि हमारे से अब विकर्म नहीं होंगे, हमारा कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा, संकल्प बोल भी, हमारी मनसा वाचा कर्मणा समान होती जाएगी। और आप दादियों से अनुभव करते हो ना ऐसा, ये नहीं हमारी वाचा कुछ है, कर्मणा कुछ है, मनसा कुछ है, नहीं, क्लैरिटी, क्लियर एकदम, ऐसे डिवाइन होते जाएंगे। तभी तो देखो दुनिया वाले अब कहते हैं कि इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन बहुत शुद्ध है, कहते हैं ना, तो ये परिवर्तन देख के कहते हैं ना, परंतु ये बाह्य थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देख के कहते हैं, पर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि एकदम मैं आत्मा, इतना मेरा शुद्धिकरण हो जाए कि दैवी संस्कार बन जाए, जो देवताओं के संस्कार हैं। तो अपने लक्ष्य की भी स्मृति हमेशा पक्की रखो, मैं क्या बन रहा हूं। देखो बाहरी बातों की हमें कितनी कॉन्शियस रहती है, मैं अफसर हूँ, मैं सर्विसमैन हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सास हूँ, मैं जेठानी हूँ, ये मेरी बहू रानी है, मैं मालकिन हूँ, मैं मालिक हूँ, क्या क्या हमको कॉन्शियस रहती है ना, हटती नहीं है, गड़ी में ही मर्ज हो जाती, पता पड़ता है, घर गई नहीं, बहू रानी अभी सोई पड़ी है, एकदम आ जाएगा, अच्छा एकदम आ जाएगा, क्यों आया, क्योंकि ये आया कि मैं सास हूं और ये बहू है, ये सूक्ष्म कॉन्शियस है, वो अभी गई नहीं। ये नहीं समझना कोई सास बैठी हो तो मुझे सुना रहे हैं, हा? ये नहीं सोचना, बहू भी बैठी होगी, बेटी भी बैठी होगी, या मालिक हो, अफसर हो, जो भी हो, आप सब हो ना, तो हमें वो कॉन्शियस कितनी पक्की है, देखो गई नहीं अभी, बाबा ने ये कॉन्शियस हटाई हटाई, ब्रह्मा बाबा ने अंदर ही अंदर अपने को तपाया, तप किया, ये उस कॉन्शियस को चेंज किया। इतना बड़ा हीरे का व्यापारी था, इतना प्रतिष्ठावान व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इतना अच्छा गृहस्थी भी था, इतना अच्छा भक्त भी था, अमीर था, सब कुछ था। आज तो किसी को अच्छा बेटा होता है, नशा चढ़ जाता है, मेरे जैसा पुत्र किसी का नहीं, मैं पुत्रवान हूँ, मैं धनवान हूँ, दुनिया में तो देखो झगड़े इसी बात के हैं। आप तो बाबा के बच्चे बदल गए, परंतु अब हम जड़ से ही बदल जाएं, तो अपनी उस कॉन्शियस को बनाओ जो रियल कॉन्शियस है हमारी, तो आप सहज बाबा से एनर्जी ले पाएंगे, कनेक्शन डीप होगा, ये पक्की बात है। जैसे पावर हाउस से भी कनेक्शन ठीक होता है तो घर में लाइट आती है ना, थोड़ा लूज हो कहीं तो वो लाइट नहीं आती है, थोड़ा सा भी लूज हो तो। ऐसे ही मेरी इतनी स्मृति अंदर से बनती जाए, ये मुझे अपने अंदर ध्यान रखना होगा। और इसके लिए बाबा ने हमें बहुत विधियां दी हैं, वो अपनाते भी हो आप, सारा दिन दिनचर्या कैसी रहे, हर घंटे बाबा को याद करो, बहुत नहीं तो 2 मिनट भी निकाल के बैठो, रात को भी तपस्या करके सो, सुबह अमृत वेला पावरफुल करो। ये अटेंशन चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं पुरुषार्थ चाहिए, डीप अटेंशन चाहिए। ऐसे भी नहीं कि हम कोई ऐसा डीप अटेंशन देने से कोई काम धंधे पे इफेक्ट आएगा और ही जल्दी होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, कर्म योगी बनकर चलेंगे। तो हम राजयोगी, कर्म योगी भी हैं, बुद्धि योगी भी हैं, संन्यास योगी भी हैं, ज्ञान योगी भी हैं, तो वो सब हमारी हाथ खड़ा कर रहे हैं, सब ठीक है ना, तो वो सब हमारी अंदर ऐसी कॉन्शियस रहे, ठीक है। और उसके लिए बाबा ने हमें ये भी कहा, ज्वालामुखी स्थिति बनाओ। ज्वाला का मतलब ही यही है, इतनी पावरफुल स्थिति बनाओ जैसे सुनार देखो कैसे गलाता है सोने को और इतना पानी जैसा कर देता है, फिर उसको जैसे सांचे में डालता है, लोहार भी क्या करता है, लोहे को गलाता है अग्नि पे, खूब अग्नि पे उसको इतना सॉफ्ट कर लेता है, फिर उसको रूप दे देता है, नया रूप दे देता है ना। ऐसे ही हमारे संस्कार अंदर से इतने गल जाएं, तो वो तब होगा जब मेरा इतना तप होगा। और वो तप कौन सा है, कोई सिर्फ चौकड़ी मारकर बैठना नहीं है, वो तप अंदर का है, अपनी स्मृति का है, बस कि मैंने अंदर क्या सोचा है, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरी स्मृति कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है। और वो अपने आप फिर आप देखेंगे जितना आपका अटेंशन होगा, जैसी आपकी कॉन्शियस होगी वैसी ही वो अपने आप आपसे झलकेगी, तो वृत्ति भी वैसी बनती जाएगी, दृष्टि भी वैसी बनती जाएगी, व्यवहार भी, कर्म भी वैसा बनता जाएगा, और फिर कर्मों के अनुसार भी संस्कार मतलब स्मृति बनती है, कर्मों से भी स्मृति बनती है। तो ये इंटरलिंक है, संस्कारों से कर्म बनते हैं, कर्मों से भी स्मृति बनती है और संकल्प चलते हैं, और उन संकल्पों से फिर हम कर्म करते हैं, इसलिए वो संस्कार पक्के होते जाते हैं। और तभी बाबा ने उसकी हमको सबसे जड़ से ही विधि सुनाई है बच्चे, कि जड़ को ही ठीक करो, माना अपनी चेतना को चेंज करो, कॉन्शियस को चेंज करो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं। अभी भी देखो दादी जानकी जब क्लास कराने आते हैं, अक्सर आजकल दादी यही 2-3 बातें बार बार रिपीट कराती है। अब ऐसे तो आप इतने महाज्ञानी महायोगी बैठे हो, दादी फिर से हमको यही बात क्यों पक्की कराती है। कई सोचते हैं हमको तो मालूम है, हमने तो सुनी हुई है, हम तो जानते हैं मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, लेकिन दादी का उसके पीछे क्या भाव अर्थ है कि दादी की रग रग में ये पक्का है, यही कॉन्शियस है। आप भी अपनी हर समय की वही कॉन्शियस बनाओ, सिर्फ नॉलेज तक नहीं रखो, वही स्मृति पक्की करो अंदर ही अंदर। जितनी वो आपकी बनती जाएगी, जितना समय वो आपकी बनती जाएगी, आपकी एनर्जी बनती जाएगी, और आपका कनेक्शन शिव बाबा से, सर्वशक्तिवान से सहज रहेगा, और तब आत्मा की शक्तियां बढ़ती हैं। ये है तप। और इसलिए हम कहते हैं ना, राजयोग से संस्कार परिवर्तन होते हैं, उसकी ये विधि है। ये मिसाल भी देते हैं ना, आप सब जानते ही हैं कि जैसे लेंस के ऊपर सूर्य की किरणें एकत्रित करो, एकाग्र करो, सबने की प्रैक्टिकल स्कूल लाइफ में किया भी होगा तो नीचे कागज जल जाता है क्योंकि उसकी इतनी एनर्जी आ जाती है। ऐसे जब हम इतना अंदर अभ्यास रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो हमारी जो कॉन्शियस बनती है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो इतने एकाग्र हो जाते हैं श्री बाबा पर, उस सर्वशक्तिमान पर, तब आत्मा के अंदर वो एनर्जी आती है, वो शक्तियां आती हैं। तो पुराना सब जल जाता है, माना पुराने संस्कार दग्ध हो जाते हैं, वो स्मृतियां चेंज हो जाती है और फिर नई जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जो ईश्वरीय संस्कार है, वो हमारे अंदर आते हैं। तो आप ये चेक करना कि अगर मेरे अंदर ईश्वरीय संस्कार आ रहे हैं तो नेचुरल उसके फल स्वरूप वो दैवी संस्कार बनते जाएंगे। एक एक ईश्वरीय संस्कार कई दैवी संस्कार बनाता है। मिसाल के तौर पे किसी बाबा, सिंपल सी बात है, शांति का सागर है, हा? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अब मुझे अपना शांति का ही संस्कार बनाना है और मैं बाबा की याद से, अपने स्वधर्म की स्मृति से कि मैं शांत आत्मा हूँ, ओम शांति भी इसीलिए कहते हैं ना हम, तो मेरा वो नेचर बन रहा है, हा? बन गया तो ऑटोमेटिकली उसके फल स्वरूप आप देखेंगे आपके अंदर, क्योंकि ये ईश्वरीय संस्कार है तो आपके अंदर उसके फल स्वरूप दैवी संस्कार आएगा। क्या दैवी संस्कार आएगा? कि आप शांत रहेंगे, मधुर रहेंगे, नम्र रहेंगे, अपने आप नेचुरल, आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपकी वाणी मीठी होगी, कड़वापन नहीं रहेगा। देवताई लक्षण तो यही होते हैं ना, तो वो दैवी संस्कार आपको महसूस होंगे और औरों को भी आपसे वो दैवी संस्कार महसूस होंगे। एक ये नेचुरल प्रक्रिया है और इसीलिए हम देखते हैं अपने सीनियर्स में, हाँ देखते हैं ना, चाहे वो हमारी दादियां हैं, हमारे वरिष्ठ भाई हैं, उनमें वो नेचुरल दिखाई देता है। तो ऐसे हमें अपने अंदर, हाँ, इस बात की रियलाइजेशन चाहिए, डीपनेस चाहिए, उस अवेयरनेस के आधार से, अवेयरनेस है, उस स्मृति को हमें बना के रखना है और लक्ष्य की दृढ़ता सदा चाहिए कि मैं क्या बन रहा हूँ। लौकिक रीति से जो बनना था वो बन गए, दुनिया में जैसे हर समय लौकिक रीति की कॉन्शियस बनी रहती है, ऐसे हमारी इस अलौकिक जीवन में अब हमारा जो लक्ष्य है वो अलौकिक कॉन्शियस बनी रहे कि मैं तो श्री नारायण बन रहा हूँ, श्री लक्ष्मी बन रही हूँ, यह मेरा लक्ष्य है। और बाबा ने इसलिए देखो बच्ची के समय 14 वर्षों में दादियों के वो फोटो भी खिंचवाए, पता है ना आप सबको ये बात, हाँ, एक एक दादी को राजाई ड्रेस पहनाकर, गुलजार दादी रहती है ना दिल्ली में, तो दादी को बाबा ने महारानी की ड्रेस पहनाई और एक एक का फोटो खींचा है, तो दादी अभी तक भी बड़े नाज से उस फोटो को सजा के, हाँ, अभी का वर्तमान का फोटो योगी जीवन का और भविष्य महारानी, विश्व महारानी स्वरूप का फोटो सामने है। ऐसे दादी जानकी का फोटो, हाँ, वो महाराजा का फोटो है, ऑलराउंडर दादी का था, महाराजा स्वरूप का। तो बाबा कहते थे कि ये देख करके आपके अंदर वही संस्कार जागृत हो कि मेरा भविष्य ये है, मैं ये बन रही हूँ आत्मा, तो वो हमें अपने लक्ष्य की स्मृति भी सदा दृढ़ रहे, लूज नहीं हो कभी भी। लौकिक दुनिया में स्टूडेंट भी पढ़ता है, उसको घड़ी घड़ी सपने भी यही आता है, अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो मेरे गले में स्टेथोस्कोप पड़ा हुआ है, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको लगता है मैं पुल पे खड़ा हूँ और मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरा लक्ष्य क्या है और उसकी मैं आत्मा ये स्टडी कर रही हूँ और मेरे संस्कार वैसे बन रहे हैं, यही मेरी मनसा वाचा कर्मणा है, तो वो स्मृति भी हमेशा हमारी दृढ़ रहे। भले अभी आपको कोई महाराजा की ड्रेस पहना के जरूरी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र ही आपका स्वरूप है ना, या नहीं? हाँ, हाँ या नहीं? हम सबका लक्ष्य है ना, ठीक है ना, तो वो हमें पक्का याद रहे, तो सहज ही संस्कार चेंज होते चले जाएंगे और अपनी मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे। परिवर्तन हो रहा है अब, और उसको अटेंशन रख के तेजी से वो हमारे अंदर दिव्यता और रूहानियत भरती जाए तो नए संस्कार सहज आ जाएंगे। ओम शांति। समय हो रहा है, चलो अभी प्यारे बाबा की याद में इतने संकल्प को दृढ़ करके बैठना जो इधर उधर की कोई स्मृति नहीं आए। अपने स्वस्वरूप की स्मृति, लक्ष्य की और ईश्वरीय, ईश्वरीय संतान हूँ मैं, अपनी इस ओरिजिनलिटी में मुझे रहना है, उसी कॉन्शियस में मुझे रहना है। सब अलर्ट होके बैठो, थोड़ा सा ऐसे समझो जैसे मैं इस हॉल में नहीं, मैं इस सीट पर नहीं, परंतु मैं अपने अकाल तख्त पर विराजित हूं। मेरा विराज, मेरा रहना, मेरा स्वरूप जो अकाल तख्त कहलाता है, जिस पर मैं आत्मा बैठी हूं, बस मैं स्वयं में अति शुद्ध प्योर चमकती आत्मा हूँ। मैं कितनी शुद्ध हूँ, कंचन हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी यही है। प्यारे बाबा, आपने मुझे मेरे स्वरूप की रियल कॉन्शियस दी, जो मैं हूं रियल में जैसी हूँ, पीसफुल हूँ, पावरफुल हूं, लवफुल हूं, वाह बाबा मैं आत्मा कितनी दिव्य हूं, मेरा चमकता स्वरूप कितना प्योर है, मुझे यही प्रिय है, कि मैं शांत हूं, पवित्र हूं, सुख स्वरूप हूं, प्यारे बाबा अब आपका स्वरूप मुझे याद आता है, मैं स्वयं में ज्योति चमकती चेतन सत्ता हूँ और आप मेरे पिता सागर है, सदा जगमगाते सर्व गुणों के सागर है, याद से मैं आत्मा स्वयं में उन गुणों का एहसास कर रही हूं, मुझ आत्मा में पवित्रता की शक्ति भर रही है, शांति की शक्ति भर रही है, मेरे संकल्प स्मृतियां सब कितनी अच्छी अच्छी शुद्ध नई नई है, मैं स्वयं में क्या हूं, कैसी हूं, आप मुझे कितना दिव्य बना रहे हैं, काया कलप ध्रुव कर रही है। यह परिवर्तन प्यारे बाबा आपकी ही स्मृति से है। आपकी याद मुझात्मा को कितनी शक्ति देती है। मुझे एनर्जी मिलती है। मैं स्वयं में शक्ति स्वरूप हूँ। वो शक्तियाँ आपसे मुझ में भर रही है। जिसके फलस्वरूप मेरे संस्कार कितने अच्छे शक्तिशाली बन रहे हैं। दिव्य बन रहे हैं। मुझ आत्मा का नवीनीकरण हो रहा है। यह दिव्यता यह रूहानियत मुझ में भरती जा रही है। मेरी मनसा वृत्ति दृष्टि कितनी शुद्ध प्योर डिवाइन हो गई। मेरा सोचना कितना श्रेष्ठ है, ऊंचा है। प्यारे बाबा आपने मेरे जीवन में कितनी दिव्यता भर दी। उसकी खुशबू सब तरफ फैल रही है। एहसास होता है मैं कितनी दिव्य आत्मा हूं। पवित्र आत्मा हूं। श्रेष्ठ आत्मा हूं। यही इस जीवन की महानता है। यह परिवर्तन मेरे जन्म जन्म को सुखी भाग्यवान बना रहा है। आपने बाबा मुझे इतनी उच्च कोटि तक पहुंचाया, दिव्य बनाया, वहां मेरा भाग्य। मैं कितनी भाग्यशाली हूं आप पारसनाथ हैं, आपकी यादों से मैं लोहा पारस बन गई। चमक गई मेरा यह जन्म, कितना धन्य है। सब जन्मों की मैल उतर गई, धुल गई, मैं स्वच्छ श्रेष्ठ सोना बन गई आत्मा। वहां बाबा, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा पाठ।
तमन्ना है ओ बाबा, तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
ओ बाबा तुम सा बनना है,
एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है, ओ बाबा तुम सा बनना है। एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना।